सूरत रात 43 आयात हैं, बड़ी सिंपल लाइट सी सूरत है, बहुत इंजॉय करेंगे आप इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम रॉ, हरूफ मुकत्तात हैं। तिलका आयातुल किताब, ये कुरान पाक की आयतें हैं, और जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से उतारा गया है सब हक है। वलाकिन अक्सर अन्नासि ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सतूनों के बुलंद कर रखा है कि तुम उसे देख रहे हो, फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है, इसी ने सूरज और चांद को मातहती में लगा रखा है, हर एक म्यादे मुय्यन पर गश्त कर रहा है, और वही काम की तदबीर करता है। वो अपने निशानात खोल खोल कर बयान कर रहा है कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। वो कहते ना, खोल आँख, देख जमीन, देख आसमान, देख, और उफक से उभरते हुए सूरज को देख, पूरी कायनात रब का तारुफ है। बोल बोल कर बता रही है कि हमें बनाने वाला कोई है। वहु अल्लज़ी मद्दल अर्द, इसी ने जमीन फैलाकर बिछा दी है, और इसमें पहाड़ और नहरें पैदा कर दी हैं, और इसमें हर किस्म के फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए। वो रात को दिन से छुपा देता है, यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं, और जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगाते हैं, और अंगूरों के बागात हैं, और खेत हैं, और खजूरों के दरख्त हैं, शाखदार, और बाज ऐसे हैं जो बेशाख हैं, सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम हर एक को एक पर फलों में बरतरी देते हैं। इन नफीजा लायातिली कौमी याकिलून, यकीनन इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इस पे गौर कीजिए, दिलों की कैफियत जमीन की तरह होती है, जैसे एक ही पानी पिलाया जाए और जमीन में से मुख्तलिफ तरह के फल सब्जियां निकलते हैं। इस वक्त कुरान की बारिश हम सबके दिलों पे पड़ रही है, आप भी मुतजाविरात हैं, साथ साथ बैठी हुई सिस्टर्स हैं। अब इसमें से खैर किसमें से क्या निकलनी है, ये आपकी शाकिला पे है, आपके पैशन पे है। कुरान की वही दिल पे तो पड़ जाती है सबके, लेकिन खैर सबसे नहीं फूटती। यहाँ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपके लिए इस दौरे कुरान को संगे मील बना दे, और आपकी अगली ज़िंदगी अब खैर की चाबियाँ बनने और शर के ताले बनने में गुजर जाए। और उसके स्टेप्स में पहली चीज़ तफसीर कोर्स ज्वाइन कीजिए, आज फिर नियत कर ले कि हमने सबीलुल जन्ना 2025 को ज्वाइन करना है, जो रमज़ान के बाद शुरू होता है, हर साल होता है। बस वो कोर्स समझ लीजिए, वही है जो कुरान आपको जमीन की गोडी करने से लेके अगले मराहिल सिखाता है। आगे भी हम कुछ आयात के साथ देखने वाले हैं एक नक्शा। अगर तुझे ताज्जुब हो तो वाकई इनका ये कहना अजीब है कि क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नई पैदाइश में होंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफर किया, यही है जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही है जो जहन्नुम के रहने वाले हैं, जो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और जो तुझसे सजा की तलबी में जल्दी कर रहे हैं राहत से पहले ही। यकीनन इनसे पहले सजाएं बतौर मिसाल गुजर चुकी हैं, और बेशक तेरा रब अलबत्ता बख्शने वाला है लोगों के बेजा जुल्म पर भी, और ये भी यकीनी बात है कि तेरा रब बड़ी सख्त सजा देने वाला भी है। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी यानी मौजजा क्यों नहीं उतारा गया। बात यह है कि आप तो सिर्फ आगाह करने वाले हैं, और हर कौम के लिए एक हादी है। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा, मादा अपने शिकम में या पेट में जो कुछ रखती है इसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है, और पेट का घटना बढ़ना भी। हर चीज़ इसके पास अंदाजे से है, जाहिर और पोशीदा का वो आलिम है, सबसे बड़ा और सबसे बुलंद बाला है। तुम में से किसी का अपनी बात को छुपा कर कहना या बावाज़े बुलंद उसे कहना, और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह पर बराबर और यकसां है। इसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसकी निगेबानी करते हैं। आगे हाईलाइट कर लीजिए आयत को, इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, किसी कौम की हालत अल्लाह नहीं बदलता जब तक कि वो खुद इसे ना बदले, जो इनके दिलों में है। अल्लाह ताला जब किसी कौम की सजा का इरादा कर लेता है तो वो बदला नहीं करता, और सिवाय इसके कोई भी इनका कारसाज नहीं। ये है वो आयत जिसपे मौलाना हाली का शेर, खुदा ने आज तक किस कौम की हालत नहीं बदली। यह ताज उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हम अपनी तारीख पर नज़र डालकर देखें तो अल्लाह के नबी के दौर से लेके तकरीबन 1000 साल, जिसको 10 सदियां कहते हैं, हम जमीन पर सूरज बन के चमके, हिदायत का, रोशनी का, कामयाबियों का, साइंस को, एलजेब्रा को, क्या कुछ अल्लाह ने इस उम्मत को ना दिया। हम बिल्कुल यूरोप के किनारे पे पहुंचे हुए थे। आखिरी मुल्क जो यूरोप में आपको आज भी दिखता है वो तुर्की दिखता है। स्पेन हमारे हाथ में था, वहाँ 400 साल तक उम्मत मुस्लिमा ने हुकूमत की, हर चीज़ मुसलमानों के हाथ में थी। आज जैसे लोग वेस्ट से मुतासर है, गैर मुस्लिमों से मुतासर है, उनको सुपर सोल पावर कहते हैं, उस दौर में लोग मुसलमानों को कहते थे। जैसे आज उनके कपड़े पहनना पसंद करते हैं लोग, उस दौर में लोग मुसलमानों के कपड़े पहनते थे। मुस्लिम आर्ट उस वक्त का फेवरेट था। क्रिश्चियन शहजादे ऐसी ऐसी एंटीक चीज़ें ले जाकर अपने महल्लात में लगाते थे, बाज़ दफ़ा उल्टी आयतें लगा लेते थे, लेकिन मरूबियत थी। फिर क्या हुआ, फिर हम बदल गए, फिर कबारियत आ गई, दुनिया की मोहब्बत आ गई। ये वही पैगाम है जो चौथे पारे में आपने पढ़ा और सुना है, यहाँ दोबारा अल्लाह आपको मुझे दे रहा है। जब तक अवाम और रियाया पर अल्लाह का खौफ गालिब था, जब तक हम लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना पे अमल करते थे, जब तक फातिमा, आयशा और खदीजा और दूसरी सहाबियात की तरह हम उनको रोल मॉडल बनकर दिखना चाहते थे, तो हम कामयाब थे। जब से हमारे मॉडल, हमारी रोल मॉडल्स बदल गई, अल्लाह ताला ने हमें खुद अपनी लगा दी। अल्लाह ताला यहाँ यही बात बताता है कि ये सब कुछ सुनने के दौरान दुआ करो कि ये कुरान तुम्हें लोगों के नफ़े का बना दे। आज इतना प्यारा दीन हमारे पास है ना, अगर उम्मत मुस्लिम मेहनती होके, फोकस होके दावत इल्लाह का काम कर रही होती, 100 नहीं, ये पूरे ग्लोब में जो सब्ज कहीं कहीं टुकड़ियाँ दिखती है ना, पूरा ग्लोब सब्ज होता और बीच में कहीं ना कहीं अभी कुफर या गैर इस्लाम होता। ये हमारी सजा है, ये जितनी मारे पड़ती हैं, जितनी जंगे जिहाद है, ये उम्मत मुस्लिमा को दावत इल्लाह छोड़ने की सजा है। हदीस है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ दोगे, अल्लाह इतना गुस्से में होगा कि उस वक्त नेकों की भी दुआ नहीं कबूल होगी। थोड़ी दुआएं होती हैं हरम में, थोड़ी दुआएं रो रो के मांगते हैं इमाम काबा, क्यों नहीं कबूल हो रही? इसकी वजह यह कि आज वो किरदार नहीं है, जिस किरदार पे अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमा दे और अल्लाह ताला हमारे कामों को बना दे। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क, वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए दिखाता है और भारी बादलों को पैदा करता है। अब यहाँ देखिए कि वो वक्त जब सारी चीज़ों का पता भी नहीं था, कुरान में ये सब आना क्या बताता है कि कुरान इल्हामी किताब है, जिस रब ने किताब दी उसी की कायनात है और उसी ने ये सारा कुछ बता दिया। और साइंस पढ़ना पढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि सवाब है, बरकत है, अगर आप उसमें तदब्बुर करते हुए अल्लाह ताला के करीब पहुंच जाते हैं। और भारी बादलों को पैदा करता है, गरज इसकी तस्बीह हो तारीफ करती है और फरिश्ते भी इसके खौफ से, और वही आसमान से बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है इस पर डालता है। कुफार अल्लाह के बारे में लड़ झगड़ रहे हैं और अल्लाह ताला सख्त कुव्वत वाला है। सोचिए जिसकी कुदरत से बिजली के अंदर इतनी कड़क चमक आती है, वो खुद कैसे अलकवी ना होगा। खौफ आता है जब बिजली गिरती है, लेकिन अल्लाह ताला की ताकत उससे बहुत ज्यादा है। तदब्बुर करते हैं इन आयात पे, अमल के नुक्ते, एक ही जमीन से उगने वाले, एक ही पानी से सिराब होने के बावजूद सब मेवों के जायके मुख्तलिफ होते हैं। फजर और असर के वक्त फरिश्तों की ड्यूटियां तब्दील होती हैं और इन नमाजों में हाजिर होने वालों के हक में वो गवाह बनते हैं, इसलिए फजर और असर को बिलखसूस वक्त पे पढ़ना चाहिए। सुबह शाम के अजकार की पाबंदी कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अल्लाह ताला की हिफाजत का जरिया है, यानी ये आपकी इंश्योरेंस है। कुरान से रहनुमाई, कुरान करीम की तरफ तवज्जो दीजिए, इसके उलूम सीखिए, क्योंकि यही हक का रास्ता है। हक की अलामत सही दलील का वजूद है, इसके मानने वालों की कसरत या कमी नहीं, यानी मेजोरिटी इज नॉट अथॉरिटी। दाई के जिम्मे दावत पहुंचा देना है, लोगों के दिलों में हिदायत डालना नहीं, यानी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कन्वे द मैसेज, नॉट टू कन्विंस देम। क्योंकि जब कन्विंसिंग की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं ना, तो फिर हम अल्लाह के पैगाम को डाइल्यूट भी करने लगते हैं कि अब कोई तो हमसे ले ले, ये कोई चीज़ बिकी नहीं रही, चलो सस्ती कर दे। ना ना, जो सच है वो दीजिए, लेते हैं तो ले, नहीं लेते तो ना ले, आपका उससे क्या लेना देना। गौर व फिक्र की बातें, मुशरिकीन ने मखलूक की कुदरत को देखकर खालिक की कुदरत का अंदाज़ा लगाया कि अगर मखलूक दोबारा जिंदा नहीं कर सकती तो खालिक भी नहीं कर सकता, ये अल्लाह की नाकदरी है। इस बात का यकीन कि फरिश्ते हर अमल को लिख रहे हैं, इंसान को गुनाह और नाफरमानी के कामों से दूर रखता है। यानी लिखे जाने का एहसास बंदे को केयरफुल कर देता है। कायनात की सारी कुव्वतें और मखलूकात अल्लाह से डरती हैं और सारी चीज़ों में सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म चलता है। अल्लाह ताला हमें अपने हुक्मों पर चलने वाला बना दे। आयत 14 से ऑनवर्ड, लहू दावतुल हक वल्लज़ीना यदून मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम। इसी को पुकारना हक है। जो लोग औरों को इसके सिवा पुकारते हैं वो इनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि इसके मुंह में पड़ जाए, हालांकि वो पानी इसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं। इन मुनकिरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है, और अल्लाह ही के लिए ज़मीन व आसमान की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सजदा करती है, इसके साए भी सुबह शाम। तो जैसे पानी के पास जाएं तो पानी खुद मुंह में नहीं आता ना, इसी तरह वही इलाही के पास आ जाते हैं ना तो ये खुद मुंह में नहीं जाएगी, इसको पूरी तवज्जो के साथ लेना होता है। सिर्फ सुनने से बात नहीं बढ़ती, कानों में आवाज़ पढ़ना सुनना नहीं होता, पास बैठकर कुरान को मुसहफ को खोल कर देखें तो फायदा होता है। और एक बात देखिए, आपको प्यास लगी हो, किस चीज़ से प्यास बुझती है? शरबत से, जूस से? नहीं, सादा पानी, ना रंग उसमें ना खुशबू उसमें, बल्कि पानी में क्या कुछ डाला हो तो और भी वहशत होती है। लिखिए, जैसे हमारी जिस्मानी प्यास सादे पानी से बुझती है ना, हमारी रूहानी प्यास वही इलाही के साफ सुथरे पैगाम से बुझेगी। वही कुरान दिल में जाता है, उसी की बात दिल में जाती है जो प्योर होती है, जो इसमें साबके लाके डाल डूल के इधर उधर के कोई रूह अफ़ज़ा डाल के, कोई कोक डाल के, सेवन अप डाल के, पता नहीं क्या दूध सोडे बना के दीन पेश करते हैं ना, उनका दीन कोई नहीं दिल पे आता। वो वक्ती तौर पे बाबू हाहू लोग कर लेते हैं, तो हमेशा प्योर पैगाम लीजिए, सादा कुरान पढ़िए, जो सादे से मराइए कि सादी बात सुनिए, कि जिसको सुनने के बाद आपको सोच में ना पड़ना पड़े कि अब इसकी क्या वजह है और इसका क्या है। यानी दूर की कौड़ियाँ नहीं लानी चाहिए कुरान के सुनने सुनाने वालों को, करीब से रह कर लीजिए। कुल मर रब्बुस समावाती वल अर्ज, सवालात आप देख रहे हैं, थॉट प्रवोकिंग क्वेश्चन, सोल सर्चिंग क्वेश्चन हैं। आप पूछिए कि आसमान और ज़मीन का परवरदिगार कौन है, कह दीजिए कि अल्लाह, सीधी सी बात है। कह दीजिए, क्या फिर भी तुम इसके सिवा औरों को हिमायती बना रहे हो जो खुद भी अपनी जान के भले बुरे का इख्तियार नहीं रखते? कह दीजिए कि अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये अंधेरियां और रोशनियां बराबर हो सकती हैं? क्या जिन्हें ये अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह मखलूक पैदा की है कि इनकी नज़र में पैदाइश मुश्तबे हो गई हो? कह दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ही तमाम चीज़ों का खालिक है, वो अकेला है और ज़बरदस्त गालिब है। इसी ने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़ी झाग को उठा लिया, और इस चीज में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं जेवर या साजो सामान के लिए, इसी तरह की झाग है। इसी तरह अल्लाह ताला हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। अब झाग तो नाकारा होकर चली जाती है, लेकिन जो लोगों को नफा देने वाली चीज है वो जमीन में ठहरी रहती है। अल्लाह ताला इसी तरह मिसालें बयान फरमाता है। हाईलाइट कीजिए, वम ममायन फोन्ना सुफयम कुछ फिलर, यह है इस पारे के थीम की आयत। जो लोगों को नफा देगा वही बचेगा। वही मशीन आपके काउंटर पे मौजूद होती है जिसको इस्तेमाल करते हैं, खराब होने की सूरत में 1 या 2 दिन के बाद उसको या तो फेंक देंगे या रिप्लेस कर देंगे। तो दुआ कीजिए अल्लाह में जाया होने से बचाए। एक एवरेज रिपोर्ट है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में मरने तक सिर्फ अपना 5% ब्रेन यूज करता है, 95% उसके साथ कब्र में चला जाता है। तो आज दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे मरने से पहले मेरे जिस्म की एक एक स्किल, खूबी और जो मेरी सलाहियत है वो तेरे बंदों के काम आ जाए। और इससे बड़ी क्या है कि लोग आपकी वजह से अल्लाह की किताब सीखने लग जाए, हर एक अपनी अपनी खूबी को पहचान के इसको ले। अनसलमिनसमाईवान फसालत अउदिया, इसी ने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़ी हुई झाग को उठा लिया, और इस चीज में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं जेवर या साजो सामान के लिए, इसी तरह की झाग है। इसी तरह अल्लाह ताला हक को बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। अब झाग तो नाकारा होकर चली जाती है, लेकिन जो लोगों को नफा देने वाली चीज है वो जमीन में ठहरी रहती है। अल्लाह ताला इसी तरह मिसालें बयान फरमाता, जिन लोगों ने अपने रब के हुक्म की बजावरी की इनके लिए भलाई है, और जिन लोगों ने इसके हुक्म की नाफरमानी की, अगर इनके लिए ज़मीन में जो कुछ है सब कुछ हो और इसी के साथ वैसा ही और भी हो तो वो सब कुछ अपने बदले में दे दें, यही हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है और जिनका ठिकाना जहन्नुम है जो बहुत बुरी जगह है। बहुत ही खूबसूरत आयतों पे नेस हुआ, आयत नंबर 18 पे। यह थोड़ी सी बात हुई है तो हक और बातिल को ज़रा समझिए। हमारे पारे के थीम में हक और बातिल की कश्मकश भी थी। दुनिया में चारों तरफ बुराइयां हो रही होती हैं, बातिल फैलता है, इतने में ज़रूरत होती है कि हक की बात को पेश किया जाए। यहाँ जो वादियों की बात है, कुरान की वही इलाही उतरती है, हर एक अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उसमें से चीज़ें ले जाता है। फिर यहाँ झाग की बात है, अरबी में मक्खन को जब्दा कहते हैं, कभी भी मक्खन की डब्बी पे देख लीजिएगा, कभी कभी चने उबालें तो ऊपर मैल कुचैल आती है, लेकिन बाद में एंड पे नीचे क्या रहता है, जो असल चीज़ होती है। तो क्या पता चला कि जब भी हक और बातिल की जंग होगी तो या तो लोगों की खैर बाहर आएगी या उनकी बुराइयां छूट जाएंगी, और कई लोग नकली झूठे सच्चे अच्छे बने होते हैं, उनकी असल भी खुल जाती है। हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी में आगे जाकर क्या आने वाला है। तो इसलिए इन आयतों को पढ़ते हुए अल्लाह से दो तीन दुआएं कीजिए कि अल्लाह मुझे हमेशा हक के काफ़िले में रखना, मेरे अंदर की खैर को बाहर लाना, मेरी बुराइयों को ख़त्म करवा दे और मुझे लोगों के नफ़े का बना दे। देखिए, कच्चा आटा कोई नहीं खाता, गुंदा आटा कोई नहीं खाता, रोटी बिलती है, फिर पकती है, जलती है, तवे पे फिर खाई जाती है। इसी तरह आप आमतौर पर रॉ होते हैं, लेकिन आपको अल्लाह आजमाइशों मुसीबतों से निकाल कर लोगों के नफ़े का बनाता है। तो हमेशा नफ़ा दीजिए, लोगों को दे, अपने साथ वालों को दे, बिल्ली को दूध पिला दें, चिड़िया को दाना डाल दें, दोस्तों के काम कर दें, यानी जो बड़े फ्रेंडली से लोग होते हैं ना, वो अल्लाह की नज़रों में बहुत बड़े हैं। तो देने वाला मिजाज बनाए, लेने वाला नहीं। हर ख़ानदान में आपको तो दो तरह के किरदार हैं, एक गिवर्स एक टेकर्स। जो गिवर्स होते हैं ना, उनके जरिए खानदान चलते हैं। देने वाली खवातीन वो इज्जत भी देती हैं, वो माल भी देती हैं, वो खिदमत भी देती हैं, खानदान बने रहते हैं। और उसके दूसरे टेकर एंड पे वो हर वक्त मुतालबात ही करते रहते हैं, मेरे हक नहीं मिले, मसाइल का शिकार होते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि अपने अंदर सुकून लाइए और खैर के साथ लोगों को फ़ायदा देने वाले बन जाएं। और सूरत इब्राहिम आपको मुझे यही सिखा रही है, बल्कि आगे सूरह इब्राहिम में भी हम पढ़ेंगे कि जितने शुक्रगुजार बनेंगे उतना अल्लाह आपसे राजी भी होगा और आप बंदों के भी प्यारे होंगे। जितना किसी को नफ़ा देंगे ना, आप उसकी दुआओं में रहेंगे, ये याद रखिए। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ें दुआएं होती हैं, इसीलिए अब अल्लाह सुब्हान तआला थोड़ा सा तकाबुल फरमा रहे हैं। अफ़ा मैं या आलम, क्या वो शख्स जो इल्म रखता है कि आपकी तरफ आपके रब की जानिब से जो उतारा गया वो हक है, इस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ एक नसीहत की गई, इन नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कुरान की दावत अक्ल और दिल रखने वाले ही लेंगे। कुरान की दावत देने वालों के मुख्तलिफ रवैये होते हैं, मुर्दा दिल अक्ल के अंधे इस दावत से फ़ायदा नहीं उठाते, दोनों का अंजाम इनके आमाल के एतबार से अलग होता है। आगे खूबसूरत किरदार, अल्लज़ीन यूफून बिअहदिल्लाह, जो अल्लाह के अहदो पैमान को पूरा करते हैं और कौलो इकरार को तोड़ते नहीं, और अल्लाह ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया वो इसे जोड़ते हैं, और वो अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का अंदेशा रखते हैं। पहले तो दुआ करें ये सारी सिफात अल्लाह हमारे अंदर डाल दे। वल्लज़ीन सबर उब्तिगा वज्हि रब्बिहिम, और वह अपने रब की रजामंदी की तलब के लिए सब्र करते हैं और नमाज़ों को बराबर कायम रखते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है इसे छुपे खुले खर्च करते हैं और बुराई को भी भलाई से टालते हैं। उलाइका लहुम उक़बद्दार, इन्हीं के लिए आकबत का घर है, जन्नत। अल्लाह आपको मुझे ये खुशखबरियाँ सुना दे, क्या होगा वहाँ? जन्नत अदन, हमेशा रहने के बागात, जहाँ ये खुद जाएंगे और इनके बाप दादों और बीवी और औलादों में से जो नेक होंगे, इनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से आएंगे, कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। सब्र के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखरत का। और जो अल्लाह के अहद को इसकी मजबूती के बाद तोड़ डालते हैं और जिन चीज़ों के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया इन्हें तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इनके लिए लानते हैं और इनके लिए बुरा घर है। अल्लाह ताला जिसकी रोज़ी चाहता है बढ़ाता है और घटाता है, ये तो दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में नहायत हकीर पूंजी है। क्या खूबसूरत तरीके से दिल को दुनिया से बेरगबत किया जा रहा है। वयकूलुल्लज़ीना कफरू, काफिर कहते हैं इस पर कोई निशानी यानी मौजज़ा क्यों नहीं नाजिल किया गया? जवाब दीजिए कि अल्लाह जिसे गुमराह करना चाहे कर देता है और जो इसकी तरफ झुके इसे रास्ता दिखा देता है। जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून तसल्ली हासिल होती है। तो इस आयत को हाईलाइट कर लीजिए, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आपके अंदर सुकून होगा ना, तो आप बाहर से भी खुश होंगे और मुतमईन भी होंगे और सूखी रोटी खाकर भी खुश होंगे। और अगर गद्दों पे सोए हुए हैं लेकिन नींद नहीं आएगी, जब अंदर सुकून नहीं होगी, अल्लाह आपको मुझे पुरसकून कर दे। और जिक्र को ज़ुबान पे रखा करें, तदब्बुर और अमल के चंद नुक्ते। किसी ऐसे काम का मंसूबा बनाइए जो आपके लिए सदका जारिया बने। आप तो किसी एक को दावत दे दीजिए, बस कल एक बंदे को दावत देकर अपने साथ बिठा लीजिए। नफली सदकात देते रहिए इससे पहले कि मौत का वक्त आ जाए और मोहलत ना मिल सके। अल्लाह के रास्ते में दोनों तरह से सदका कीजिए, एक छुपा कर और एक ऐलानिया रहनुमाई। इंसानों के दिल वादियों की तरह मुख्तलिफ हैं, हर शख्स अपनी वसअत कलबी के एतबार से ही खैर समेटता है। जो सब्र अल्लाह की खातिर किया जाए इस पर अजर भी अल्लाह ही देता है। मिसालें बयान करना तालीम व तरबियत का मुफीद तरीका है, इसे अख्तियार करना चाहिए। गौर व फिक्र, इल्म को आसमान से बरसने वाले पानी से तशबीह दी गई, इसलिए इल्म के जरिए दिलों को जिंदगी मिलती है, जैसे पानी से जिस्मों को जिंदगी मिलती है। आसमान और जमीन में मौजूद तमाम मखलूकात अल्लाह को सजदा करती हैं। अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों के साथ इनके महबूब लोगों को भी इकट्ठा कर देगा, ताकि इनकी आंखें ठंडी हों और इनकी खुशियाँ दोबाला हो जाएं। अपने लिए दुआ करें, अल्लाह हमें हमारे प्यारों के साथ जन्नत में दाखिल करे। दुनिया की ज़िंदगी पर मुतमईन होना उस वक्त बुरा है जब इंसान आखिरत से गाफिल हो जाए, यानी हलाल तरीके से जो दुनिया मिले उसको तो लेना है। आगे देखते हैं आयत 29 से, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती तूबा लहुम व हुस्नु मआब। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम भी किए, इनके लिए खुशहाली है और बेहतरीन ठिकाना है। इस तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, कि आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए। ये अल्लाह रहमान के मुनकिर हैं, आप कह दीजिए कि मेरा पालने वाला तो वही है, इसके सिवा दर हकीकत कोई भी लायक इबादत नहीं। इसके ऊपर मेरा भरोसा है और इसी की जानिब मेरा रजू है। अगर बिलफर्ज कुरान यानी इस आसमानी किताब के जरिए पहाड़ चला दिए जाते, या जमीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती, या मुर्दों से बातें करा दी जाती, फिर भी वो ईमान ना लाते। 8वां पारा याद कर लें, बिल्कुल यही मुतालबा वहां था। बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है, तो क्या ईमान वालों को इस बात पर दिल जमे ही नहीं कि अगर अल्लाह चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे। कुफार को तो इनके कुफर के बदले हमेशा कोई ना कोई सजा पहुंचती रहेगी, या इनके मकानों के करीब नाजिल होती रहेगी, यहाँ तक कि वादा इलाही आ पहुंचे। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। और अब आगे जरा नबी सल्लम की मोहब्बत को महसूस कीजिए, इतनी प्यारी शख्सियत, इतना प्यारा किरदार, लेकिन इसके बावजूद आपका मजाक उड़ाया जाता था, आपको ताने दिए जाते थे। तो अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं, वला कद इस्तुखज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, यकीनन आपसे पहले के पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया था और मैंने भी कुफार को ढील दी थी, फिर इन्हें पकड़ लिया, बस मेरा अजाब कैसा रहा। अफमन हुवा क़ाइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत, क्या वो अल्लाह जो निगेबानी करने वाला है हर शख्स की इसके किए हुए अमाल पर, इन लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराए हैं? कह दीजिए जरा इनके नाम तो लो, क्या तुम अल्लाह को वो बातें बताते हो जो वो जमीन में जानता ही नहीं, या सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें बनाते हो? बात असल ये है कि कुफर करने वालों के लिए इनके मकर सजा दिए गए और वो सही राह से रोक दिए गए हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे इसको राह दिखाने वाला कोई नहीं। लो अजाब, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है। इन्हें अल्लाह के गजब से बचाने वाला कोई भी नहीं। इस जन्नत की सिफत जिसका वादा परहेजगारों को दिया गया है ये है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इसका मेवा हमेश की वाला है और इसका साया भी। ये है इंजाम परहेजगारों का, और कुफार का इंजाम दोजख है। अल्लाह मुत्तकी बनाकर हमें जन्नतों में दाखिल कर दे। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब दी है वो तो जो कुछ आप पर उतारा जाता है इससे खुश होते हैं, और जो दूसरे फिरके हैं इसकी बाज़ बातों के मुनकिर हैं। आप ऐलान कर दीजिए, मुझे तो सिर्फ यही हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और इसके साथ शरीक ना करूं, और मैं इसी की तरफ बुला रहा हूं, और मेरा जाना इसी की तरफ है, यानी इसी की जानिब मेरा लौटना है। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आपको मुझे भी अपने वापस जाने का ख्याल दिलाया गया। وكذلك انزلناه حكما عربيا. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا, اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا. ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. کسی رسول سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت لے کے لے آئے. ہر مقررہ وعدے کا ایک لکھت ہے, یعنی اجلن کتاب کیا ہے, ہر وعدے کا ایک وقت لکھا ہوا ہے. یہاں تقدیر سے متعلق آیت نوٹ کریے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے, لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. تو لکھیے, تقدیر کے لکھے کو مٹانا یا لکھنا اللہ کے ہاتھ میں. یہی اس پارے کے تھیم میں بھی تھا نا کہ اتفاقات نہیں, تقدیر یا تدبیر الہی ہے سب کچھ. ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے اگر کوئی ایک ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے اور حساب تو ہمارے ہی ذمے. اور ہم آج کیا کرتے ہیں, پہنچانے کا کام اللہ پہ ڈال دیا, رسول پہ خود ہی کر لیں گے اور حساب ہم لیتے پھرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ابلاغ کا کام کرنا انسان کی انسانیت ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے, کوئی اس کے حکم کو پیچھے ڈالنے والا نہیں. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. کیسے حساب لیتے ہیں؟ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی, لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. کفار کو بھی معلوم ہو جائے گا اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے, اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ایسی بے نیازی چاہیے جو اللہ کے نبی کی تھی. آیات پر عمل. گھر سے نکلتے وقت دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو شعور سے مانگا کریں. دعا کریں کہ امت میں علماء اور طالب علموں کی کثرت ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. صبح و شام 3 دفعہ یہ دعا مانگا کریں, رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد نبی جن. پھر انشاءاللہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے. قرآن سے رہنمائی. اگر کوئی آپ کے ایمان اور استقامت کا مذاق اڑائے تو غم نہ کریں, اللہ خود ان سے نبٹ لے گا. عربی زبان سمجھنے اور پھیلانے کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ قرآن سمجھنے کے لیے بنیاد ہے. اور اس بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر صورت کے ساتھ قرآن نے ایک پاک کے لفظ کے ساتھ عربی زبان کا تذکرہ ہے. کافروں کے شبہات سننے اور قبول کرنے سے بچیں, ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نفس کے حوالے کر دے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. کوئی غلط بات سن کے دل میں شک آئے نا, اس بات کو سننا چھوڑ دے تاکہ دل میں شک نہ آ جائے. غور و فکر کے گوشے. اللہ کی طرف انابت کا مطلب اللہ کی عبادت اور اطاعت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا. اللہ تعالیٰ جو نفس کی کمائی اور ہر ایک کے اعمال کا نگران ہے, وہ عبادت کا زیادہ حقدار ہے یا کوئی دوسرا جو اس جیسا نہیں؟ مراد کیا ہے؟ اس جملے کو سمپل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کما رہا ہے, اس لیے عبادت کا حقدار بھی وہی ہے. قرآن پاک کی 2 خوبیاں اور کمالات. نمبر 1, قرآن حکم ہے, اور دوسری بات ہے یہ عربی زبان میں ہے. بعض احکام کو منسوخ اور بعض کو باقی رکھنا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, لہٰذا آپ کو مجھے اس پہ اعتراض کا کوئی حق نہیں. تو خوبصورت سے پوائنٹ پہ سورت رات ختم ہوئی. آپ نے دیکھا کہ پوری سورت میں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دکھی کہ جس کو سن کر آپ کے دل میں ذرا سا بھی شک آئے کہ اللہ خالق مالک اور مدبر نہیں ہے.